ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षूरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो। यां प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानकुश। तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं नय मां शरणं। बहुत से लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि मुसलमानों के एक अल्लाह खुदा है, क्रिश्चियनिटी में भी एक गॉड है, एक ईश्वर को मानने वाले लोग हैं, किंतु हमारे सनातन धर्म में बहुत से देव देवियां बहुत से भगवान हैं। ऐसा क्यों? भगवान का जो रूप नहीं मानते हैं वो भी, जो उनकी लीलाओं को नहीं मानते हैं, आकार को नहीं मानते हैं, जो कृष्ण को मानते हैं, राम को मानते हैं, जो नारायण को मानते हैं, विष्णु को मानते हैं, शंकर जी को मानते हैं, गणेश जी को मानते हैं, दुर्गा जी को मानते हैं, तरह तरह के इसमें मानने वाले, इसमें तरह तरह के देवता लोग हैं और भगवान भी अनेक प्रकार के हैं। और उन लोगों में वो लोग कहते हैं हम लोगों में केवल एक खुदा या एक अल्लाह है, एक गॉड है, दूसरे ऐसा क्यों? न समझने के कारण। जरा सनातन धर्म नित्य है ना, सदातन, इसमें बड़ी उदारता है। यदि केवल एक ही क्लास रहे एमए पीएचडी तो लड़के कैसे योग्य बनेंगे? इसलिए प्रारंभिक जहां ज्ञान का विकास होता है, प्रारंभिक स्थिति से योग्यता के अनुसार में बहुत से क्लास होते हैं, उसमें तरह तरह के प्रश्न भी उठ सकते हैं, शंकाएं भी रखने का अवकाश है। यह सनातन धर्म में ही केवल है, और जब है या तो तलवार और ये ऑर्डर, कोई शंका नहीं, कोई प्रश्न नहीं उठ सकता। और हमारे यहां जीवों के अधिकार के अनुसार जो जो तामसिक गुण में है, राशिक गुण में है, जो सत्व गुण में है, जो निर्गुण में स्थित है, जो आत्मा का रियलाइजेशन करने वाले हैं, प्रेम का कुछ विकास है, आराधना का कुछ स्तर है, उनके अनुसार में सबके लिए अधिकार के अनुसार में क्लास बनाया गया। और जगह में क्लास नहीं है, हमारे यहां जैसे न जे जथा प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मेषु, माने सभी जीव भगवान के आराधना में ही हैं, किंतु समझने का जरा फेर है। उनसे अलग है नहीं, सभी हमसे संबंधित हैं। देवता लोग भी उन्हीं की विभूति हैं। उनकी तो बात छोड़ दो, प्रभु को एक तीन का समझ करके और प्रभु का ध्यान करो उस तिनके में, तो उस तिनके में भी वो है। मूर्ति की तो अलग बात रहे, एक तीन का भी, एक चीटी में भी भगवान है, एक सुअर में भी है। गीता में कहा गया ना, जो गाय में, सुअर में, कुत्ते में, गधे में और पंडित जो लोग हैं वो सब समदर्शी ना। ये केवल सनातन धर्म में ही संभव है, और कोई नहीं, किसी भी धर्म में नहीं है, क्योंकि इसमें श्रेणियां हैं, विभाग हैं। इसमें प्रश्न और शंकाओं का भी स्थान है। हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, गीता से लेकर के भागवत, रामायण, पुराण, सब में पहले प्रश्न है, उसका उत्तर है। इस तरह से इसमें श्रेणियां हैं, और किसी भी धर्म में श्रेणी नहीं। इसलिए हम एक ईश्वर के ही उपासक हैं। उसके विविध प्रतीतियां हैं। प्रतीति समझते हैं ना, क्या प्रतीति का?
विभिन्न प्रकार
प्रकाश उसके हैं, किंतु उसी का ही है। जीव उन्हीं से निकले हैं, भगवान के जितने अवतार उन्हीं से निकले हैं, देवता लोग भी उन्हीं की विभूतियां हैं, तीर्ण गोल मलता उन्हीं से ही संबंधित है। ऐसा कोई भी स्थान नहीं जहां पर वो नहीं है। इसलिए बहुत ऊंचा धर्म है सनातन, माने यही होता है। और सबका कोई निश्चित तिथि है, 1900 आज कितना है, 99 है ना। उसके पहले क्रिश्चियनिटी धर्म नहीं था, नहीं था। हिजरी मुसलमानों का करीब करीब कितना है मुझे याद नहीं, 1400 कितना यह होगा, इसके पहले नहीं था।
1200
कितना। और हमारा सनातन अंकों में नहीं दिया जा सकता। जब से भगवान है, जब से जीव है, तभी से है नित्य सनातन। इसलिए आप लोगों को गौरव होना चाहिए, हम भारतवासी हैं, हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, इसका गर्व रखेंगे। किसी जाति, कोई भी जाति पुरानी नहीं है। कोई नहीं कह सकता कि हमारे फोर फादर का नाम क्या है, किंतु हम कह सकते हैं हम कश्यप गोत्र के हैं, हम इस गोत्र के हैं, सांडिल्य गोत्र के हैं, हम कह सकते हैं। इसलिए आप लोगों को इसका गौरव होना चाहिए, इससे ऊंचा उठा करके कहेंगे। ऐसी हमारी संस्कृति विश्व में कहीं भी पुरानी नहीं है, क्योंकि ये सनातन है। जीवात्मा अमर है, भगवान अजर अमर है, उन दोनों का रिलेशन जो संबंध है, इसी को कहते हैं धर्म। यही प्रेम है, ये भी नित्य है। जरा प्रेम जगत में पचड़े में पड़ करके, अभी स्वार्थ के वजह से अभी कुछ गड़बड़ हो गया है। इसी चीज को जगाने के लिए इस संसार में स्त्री और पुरुष का प्रेम है, माता पिता का पुत्र के साथ में स्नेह है। ये सब चीजें नहीं रहती तो हम उसको, उसके प्रति प्रेम नहीं डाइवर्ट कर सकते थे। ये परवर्टेड रिफ्लेक्शन ऑफ एटर्नल वर्ल्ड है, उसकी छाया है, एक शिक्षा का आगार है। यदि किसी का प्रेम सूख जाए तो क्या होगा, उसका जीवन ही बेकार चला गया। जिसको स्त्री और पति में परस्पर प्रेम है, पुत्रों में स्नेह रखता है, भले ही अभी वो विकृत है, तो भी इसी को अवलंबन करके, इसी को हम भगवान के चरणों में दे करके विशुद्ध प्रेम लाभ कर सकते हैं। चैतन्य चैतामृत में ऐसा कहा गया, विषय ते आचे एवे प्रति ये अमार से मत प्रति हो उपचार। बिल्ल मंगल को वेश्या के प्रति अत्यंत आसक्ति थी, किंतु जब उसने ठोकर मारा थोड़ा सा, इस रक्त और हाड़ चाम पैखाना भरे हुए टट्टी भरे हुए शरीर में तुमको इतना प्यार है, तुमको लज्जा नहीं चाहिए, क्यों नहीं उस भगवान के साथ में प्रेम करता है। बस एक धक्के में वो ठीक हो गया, सारा प्रेम उसका स्नेह जो कुछ था सब एकत्र करके भगवान के चरण में जाती है। यदि वो प्रेमी नहीं रहता तो क्या देता। इसलिए भगवान ने इसको ऐसे ही बनाया है कि इसी को अवलंबन करके हम भगवान के साथ में भगवान को हम अपना पुत्र बना सकते हैं। इसी को वात्सल्य भाव कहते हैं। कोई कोई उनको अपना मित्र भी बना सकता है, जगत में मित्र हैं, ऐसे भगवान को अपना मित्र बनाओ। कोई को अपना स्वामी बना लो, जैसे हनुमान जी राम को अपना स्वामी बना लेते हैं, दिन रात राम राम में रमे रहते हैं, उनको राम की सेवा का अतिरिक्त और कोई चीज की लालसा ही नहीं। इसी तरह से कोई उनको अपना पति बना सकता है, जैसे रुक्मिणी ने उनको अपना पति बनाया, सीता जी ने राम को अपना पति बनाया। प्रेम के ध्वंस होने का कारण, टूटने का कारण उपस्थित होने पर जो प्रेम टूटता नहीं बढ़ता है वही प्रेम है, और जो प्रेम ऐसा दिखता है किंतु कोई झटके लगने पर टूट जाता है वो विषय है, भोग है, वो प्रेम नहीं है। सीता जी से राम का संबंध टूटने के बहुत से अवसर आए, राम ने सीता जी को बाहर कर दिया, प्रेम टूटा नहीं, टूट ही नहीं सकता। कृष्ण मथुरा चले आए वृंदावन से और चले गए तीर्थ द्वारका, उन्होंने 16,000 एक नहीं 16,000 रानियों के साथ में विवाह कर लिया, किंतु ब्रज का प्रेम टूटा। उन्होंने यह भी कह दिया जी मैं तो वसुदेव और देवकी का पुत्र हूं, गोप कहना भी छोड़ दिया। क्या प्रेम टूट गया? प्रेम इतने ऊपर शिखर पर था जो उद्धव जैसे प्रेमी भक्त भी आश्चर्यचकित हो गए उनका प्रेम देखकर। इसी तरह से हमारा भी उनका संबंध है, कोई ना कोई संबंध है, क्योंकि हम उनके पार्ट और पार्सल हैं। अभी वो टूट गया है, जैसा टूप नहीं दब गया है, छिप गया है इस भौतिक शरीर में भौतिक कामनाओं वासनाओं के द्वारा, और वह जिसको स्त्री से प्रेम नहीं है, पुत्रों से प्रेम नहीं है, अंततः तो वो कुत्ते से प्रेम करता है, बिना प्रेम का रह नहीं सकता, रह ही नहीं सकता। नहीं होगा तो अपने जुल्फों से प्यार करेगा, किसी न किसी जरूर में वो उसका प्रेम मान ही नहीं सकता ये उसके अंदर में प्रेम है। यही प्रेम शुद्ध हो करके भगवान के चरणों में लगने पर इसी का नाम भक्ति हो जाता है। इसके संबंध में मैं श्रीमद् भागवत इत्यादियों से इस श्लोक तो नहीं बतला रहा, किंतु श्लोक ऐसा ही समझिए, बहुत सी शिक्षाएं में प्रभु एक काम करते हैं और उसमें हजारों शिक्षाएं भरी रहती हैं, उसमें गंभीर रहस्य होते हैं। कृष्ण ने कहा कि तुम गोपियों को अपने पतियों को छोड़कर के यहां पर कैसी चली आई, पति की सेवा करना ही तुम्हारा कर्तव्य। पति अंधा लंगड़ा दूल्हा जैसा भी हो, स्त्री को उसे छोड़ना महापाप है, इस जगत में भी उस जगत में भी, इसलिए घर में लौट जाओ। रात है, यहाँ पर अघोर जीव जंतु इत्यादि हैं, और रात भी बड़ी गंभीर है, अंधेरी रात है, लौट जाओ। और जब कृष्ण उनसे पीछे मिले तो कृष्ण ने कहा कि मैंने कब कहा जी लौट जाओ, अघोर रात्रि नौ घोर रात्रि, मैंने तो ये कहा जी पूर्णिमा का चांद चमक रहा था, मैंने ये कब कहा, और उसमें लगा दो घोर नहीं बल्कि पहले का और उसमें पिछले में लगा दो अघोर रूपा, घोर रूपा नहीं। अरे उस दिन तो पूर्णिमा का चांद चमक रहा था, भला उस दिन रात कहाँ से आएगी। अघोर सत्व निमित्त, घोर सत्व नहीं और पकी जात नहीं, अप्रोति जात, जात नहीं, जाओ मत। अरे मुझसे बढ़कर के तुम्हारा प्रियतम पति कौन हो सकता है, नहीं पति का पति का पति का परम पति का पति मैं हूं। तो मैंने कब कहा, तो गोपियां मुस्कुराने लगी। सबके बड़े गंभीर अर्थ हैं, बिना गुरु के जो शुद्ध ऐसा भजन करने वाला न हो, शास्त्रों का गंभीर अर्थ अपने गुरु से नहीं सुना हो, अनुसुड़ियात पहले सुने, मनन करे, विचार करे, साधन करे, तब उसको समझ सकता है शास्त्रों के अर्थ को। लिखा है मान लेके, राम तुम कहां जाते हो, राम कहां जाते हो, राम कहां गए थे, ये पूछा, एक शब्द है, सेंटेंस है। यदि पूछा राम तुम कहां गया था, तो वो कहेगा जैसे मैं यहां गया था सरल सहज रूप। मैं यदि कहूं राम तुम कहां गया था, इसका अर्थ क्या होगा, मैं स्थान नहीं पूछना चाहता, तुम क्यों गए, राम तुम कहां गया था, इसका अर्थ क्या होगा, मैं जानता हूं तुमको नहीं जाना चाहिए, तुम गलत रास्ते पर गए। स्टोन में छिपा है अर्थ, शब्दों में जो क्या इसका अर्थ है, जो कहने वाला वक्ता का, गीता का, भागवत का, रामायण का, पुराण का, ये गुरु परंपरा की धारा से जाना जा सकता है। अपने पढ़ेंगे आप अपने मन के भाव को लगा करके उसका अर्थ निकालेंगे, वैसा नहीं। इसलिए गुरु परंपरा की धारा से ये जाना जा सकता है। कोई लाख विद्वान हो, लाख विद्वान हो, वो क्या समझेगा। यदि ये गीता का अर्थ समझना है तो अर्जुन से समझो, अर्जुन ने जिसको समझाया उससे समझो, व्यास और सुखदेव से समझो, उनकी परंपरा में जो उनसे सीखे हैं उनसे सीखो, तब तो परंपरा की धारा में वही समझेगा जो कि कृष्ण का आशय था कहने का, नहीं तो नहीं समझ सकते। पहले कृष्ण पहले ही कहते हैं, अर्जुन कहते हैं कि आप हमारे गुरु सर्वस्व हैं, मैंने आत्मनिर्धन आपके जो कुछ कहेंगे मैं बिना आना खाने का सब मैं ग्रहण करूंगा, करिष्ये तव वचनम, वचनम तव, तुम्हारी वचन, आप भगवान हैं, मान लिया। ऐसे गीता का समझना है तो पहले इस रूप में मान करके तब गीता में आगे बढ़िए, और नहीं तो अपने मनमानी अर्थ करेंगे कि इस शब्द का अर्थ ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। इसे गुरु परंपरा की धारा से उसे समझना, कहे तो ये दकियानुदेशी अर्थात ये तो एक भाव का, एक तरह का, ये तो गुड़ामी है। गुड़ामी मैंने एक गुएमी बंगला में, और ऑन द विश्वास एक ही मानता है और दूसरा किसी की बात ही नहीं सुनता, ऐसा समझेगा। हमारे शास्त्रों में ऐसा नहीं, बहुत उदार वृत्ति लेकर के सुनते हैं। एक समय की बात है, श्रीमद् भागवत की बात कर रहे हैं, इसके अगला प्रसंग, शंकर जी रामचंद्र जी का दर्शन करने के लिए चले। बात त्रेता युग की, कौन सा त्रेता युग,
त्रेता युग में रामचंद्र जी आए थे,
आए थे, इसके पहले वाला ठीक त्रेता युग नहीं, उसमें नहीं आए थे
भाई,
उसमें ये सब विचार बहुत है। खैर आप समझ लीजिए, त्रेता युग में रामचंद्र जी पिताजी का बात मानने के लिए, आदेश पालन करने के लिए वहां पर आए हैं, कौन से वन में,
दंडकारण्य
में। सीता जी का अपहरण हो चुका है, लक्ष्मण और राम, राम हासिते हासिते विलाप करते हुए बड़े दुखी हो रहे हैं, ऐसे हो गए कि पेड़ों से पूछ रहे हैं, सीता जी तुम्हारी बड़ी प्यारी थी, जरा बतला सकते हो, जी वो कहाँ गई? नदी से पूछती हैं, अरे तुम्हारे घाट पर आई थी, तुम्हारी तो बड़ी सहेली थी, तुम बतला सकती हो किधर गई? पेड़ों से, पौधों से, सबसे पूछ रहे, हिरणों से पूछ रहे, पागल जैसे हो गए। और ठीक उसी समय शंकर जी सती जी को लेकर, सती जानते हैं ना, शंकर जी की पत्नी, प्रजापति दक्ष प्रजापति की सबसे छोटी, परम सुंदरी, रूपवती, गुणवती, सब विषय में वो सती जी उनको लेकर के आए दर्शन करने के लिए। देखा जय राम विरह में आतुर होकर के हासीते हासीते कह करके पागल हो रहे हैं, आंखों से आंसुओं की धारा, और लक्ष्मण जी सिर नीचे किए हुए राम की रक्षा करते हुए और उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। जब निकट में आए तो शंकर जी ने मनी मन में स्तौ स्तुति की और सोचा जी इनका, इनकी लीला में कोई व्याघात न आए, इसलिए दूर से ही छिपे रहकर उनकी दूर से परिक्रमा की और परिक्रमा करके साष्टांग प्रणाम किया और उनकी स्तौ स्तुति की और स्तुति करके जब लौटने लगे तो सती जी ने कहा, आपने किसको प्रणाम किया? आप तो मेरे गुरु हैं परम तत्व के और हमारे पति भी हैं। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि शंकर जी गुरु होते हुए उनके पति कैसे बन गए? अरे भाई, पति परमार्थ की चीज है और पतित्व गुरु और पतित्व है ये संसार की चीज, वो परमार्थिक चीज है, आत्मा से उसका संबंध है, कोई भी हर्ज नहीं। पति पत्नी का भी गुरु हो सकता है परमार्थ के लिए, इसमें कोई भी हर्ज नहीं। तो सती जी ने पूछा, प्रियतम आप किसे प्रणाम कर रहे हैं? आप देख रहे हैं अपनी पत्नी के वियोग में हासीते हासीते कह करके पागल हो रहा है ऐसा कामी पुरुष, आप इस कामी पुरुष को जो कि ये नहीं जानता है जिसकी पत्नी को कौन लेगा कहाँ गए, इतना अंतर्जामी भी नहीं है, सर्वज्ञ नहीं है, और आप इससे प्रणाम कर रहे हैं, ये कौन है? हमने सुना है जय राम एक पर ब्रह्म है, समस्त विश्व के भरण पोषण करने वाले, सर्वंतर्जामी और विश्व का पलक में भी ध्वंस करने वाले, सृष्टि करने वाले एक राम प्रभु हैं और एक ये दशरथ पुत्र राम है, ये तो मैं जानता हूं जी, सीता कहाँ है ये तो मैं ही जानती हूँ, और ये जानता नहीं और विलाप कर रहा है कामी पुरुष की भांति, इसको कुछ पता नहीं, आप इनको प्रणाम कर रहे हैं? नहीं, मैं उस पर ब्रह्म जो राम है उन्हीं को प्रणाम कर रहा हूं, वो हमारे आराध्य हैं, यही हमारे आराध्य हैं, तुम इस पर विश्वास करो। उनके मन में नहीं भाया, उन्होंने कहा मैं नहीं समझ रही, तो तुम ऐसी बात करो नहीं समझ में आता तो परीक्षा जरा कर लो, बात क्या है, मैं थोड़ा सा भी चलता हूं वहीं पर पास में पेड़ है और तुम परीक्षा करके आ जाओ। कहा जी क्या परीक्षा करूंगी, फिर भी रह गई पीछे। और शंकर जी ने सोचा, होई है सोई जो राम और रची राखा, वही होगा जो राम ने करके रखा है, को कर तर्क बढ़ा वही साखा। अब जब इसका ऐसा ही दुर्भाग्य है तो जो होना होगा सो प्रभु की इच्छा होगी, अब उसी पर निर्भर रह जाए, क्या होगा नहीं होगा मैं उसके लिए घबराऊं कुछ लाभ नहीं। गुरु को अपने शिष्यों के लिए बहुत चिंता होती है, कहीं हमारा शिष्य विपत्त में न जाए, जो अधकचरे होते हैं, जो ठीक अभी गुरु नहीं होते उनके लिए तो बहुत बड़ा भारी प्रॉब्लम हो जाता है, किंतु शुद्ध गुरु को इसलिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही साखा। ठीक है, प्रभु की इच्छा में इच्छा मिला करके ही हमको चलना है। सती जी ने सोचा मैं क्या परीक्षा करूं, ठीक है ये यदि कामी पुरुष है तो मैं सीता का रूप यदि धारण कर लूं तो मैं देख करके हास्ते हास्ते कर करके हमारा आलिंगन कर लेगा, दौड़ेगा, नहीं समझ सके। और यदि सचमुच में पर ब्रह्म है तो वो जान जाएंगे हमें तो ठीक है मैं सीता का रूप बनाऊं। और एक मिनट के अंदर में उन्होंने सीता जी का जैसा ठीक रूप बनाया, बनाते ही रामचंद्र जी के सामने का वो तो हाथ सीते वृक्षों से इधर उधर कर करके कर रहे, और वो ठीक जिधर राम आ रहे हैं ठीक उसी तरफ में जा रहे हैं जैसे ये राम की नजर हमारे पर ऊपर में पड़े, तब देखें क्या करता। राम उनको देख करके भी नहीं देखते हैं, फिर इधर से इधर चले जाते हैं और फिर उधर से वो घूम करके उनके सामने आते। दो चार बात करने के बाद में जब निकट में आई तो उन्होंने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, ये प्रभु हमारे कहाँ गए, अकेले आप कहाँ आप घूम रही हैं, सती जी आप क्यों यहाँ पर अकेली क्यों,
शंकर जी कौन,
और शंकर जी कहाँ गए। सुनते ही बस अजी ये कैसे जान गए, सचता परम ब्रह्म है। अब तो ये देखते हैं कि ये होश आवाज पूरा है और न रो रहा है न कुछ कर रहा, और ये कैसे जान लिया। इतने में जबकि उनको होश हुआ तो फिर उन्होंने प्रणाम किया राम को, प्रणाम करते हैं आंख खुला तो देखा जिसे जिधर देख रहे हैं उधर सीताराम 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 सब सियाराम मैं सब जगह सियारो सरक में देखा, इधर देखे सियार उधर देखे सियार उधर देखे सियाराम उधर देखे बस एकदम गिर करके प्रणाम किया। अब उनका सारी उनकी सारी शंकाएं दूर हो गई, सबके अंदर में सीताराम है किंतु सभी राम नहीं सीताराम नहीं है, यह बात गलत है। सियाराम में सब जग जानी इसका अर्थ नहीं है कि सभी सियाराम हो गए। हनुमान जी यदि देखते रावण को भी तो सियाराम यदि देखते तो उसे वो मारने की जरूरत क्या थी, कुंभकर्ण को मारने की जरूरत क्या थी, मेघनाथ को क्यों मारा यदि वो भी सियाराम है तो। हाँ उसके अंदर में सियाराम है किंतु वो समझ नहीं पाता, इसलिए भक्तों की दृष्टि बहुत ऊपर होती है। सियाराम मैंने ऐसी कोई भी स्थिति कोई जगह नहीं है कोई ऐसा नहीं है जिसके देखने से भक्तों को सियाराम की उद्दीपना नहीं होती। जलमय हो गया, बाढ़ाई जलमय हो गया, क्या सब प्राणी जीव जंतु मनुष्य सब पानी बन गए। पानी की अधिकता का नाम है जलमय होना। उसी तरह से सियाराममय कृष्णमय का तात्पर्य है भक्त जहां देखता है उसमें सियाराम के ऊपर राधा कृष्ण की स्मृति होती है, उद्दीपना होती है, उनके अतिरिक्त तो कोई है ही नहीं है कुछ, उनके संबंध के बिना सब जगह सर्वत्र सब में देखता है। देखकर के सती जी तो एकदम दंडवत प्रणाम किया और उठा तो देखा क्या, हासिते हासिते अब सीता उनके तरफ में नहीं देख रहे और पेड़ पौधों से पूछते हुए अब चले जा रहे। इनका तो जो शंका थी वो दूर हो गई, अब लजाती हुई और कुछ शंकर जी के तरफ में चले। जब निकट में आए तो शंकर जी ने पूछा क्या परीक्षा दिया, एक तो गुरु के वचन में विश्वास पहले नहीं हुआ है? तुम समझते हो नहीं समझते हो, गुरु का आदेश या विचारणीय, गुरु का आदेश मान लो यदि गुरु ऐसा है तो उस पर विचार मत करो, कैसे ये ठीक है पीछे समझो, उनकी कृपा से उनसे पूछो किंतु उनके वचनों में विश्वास रखो कि हाँ ये बात ठीक है। तो पहला तो उन्होंने हुआ जो अपने गुरु के वचनों में शंका थी, संदेहात्मा विनश्यति, जिनको संदेह होता है गुरु के वचनों में शास्त्र के वचनों में भगवान के वचनों में गीता के वचनों में रामायण के पुराणों के वचनों में उनका विनाश होता, विनाश माने परमात्मा से गिर जाते हैं। इसलिए पदातर उन्होंने किया, ये अवज्ञा थी गुरु की। दूसरी बात उन्होंने पूछा, सच सच बतला देती, परीक्षा किया, कह देते हाँ जी हमने परीक्षा की तो कोई बात नहीं होती, किंतु उन्होंने छिपाया। उन्होंने कहा जी हे नाथ आप मेरे गुरु हैं, मैं क्या उनकी परीक्षा ली। उन्होंने ध्यान लगाया, विलंब किस लिए हुआ, अरे ये तो मेरी आराध्या सीता देवी का रूप धारण किया, अब तो मेरी माँ बन गई, आराध्या देवी बन गई है, अब स्त्री का संपर्क नहीं रहा, अब बाएं की तरफ में उनको स्थान नहीं रहेगा, माँ का जैसा सम्मान देते हैं, अब इनसे स्त्री का संबंध नहीं रहेगा, अब माता का आराध्य और आराधक का संबंध हो गया, उस देह को जिसने सीता बना लिया, अब कैसे स्त्री हम बना सकते हैं। इसलिए मन ही मन में संकल्प किया, आज से ये मेरी आराध्या के रूप में रहेंगी, मैं इनको स्त्री के रूप में ग्रहण नहीं करूंगा। इतने में आकाशवाणी हुई कि आपका संकल्प साधु ऐसा, आपके अतिरिक्त तो कोई ऐसा संकल्प कर नहीं सकता। फूलों की वर्षा हुई। सती जी ने कहा ये क्या हुआ, आपका संकल्प साधु है, पवित्र है, आपका संकल्प क्या है, मैं जाननी चाहती हूँ। उन्होंने कुछ भी उत्तर नहीं दिया, बस राम राम स्मरण करते हुए उनको लेकर के अपने कुटी में लौटे, और कुटी में लौट करके उनको आज बाएं तरफ में स्थान नहीं दे करके सामने स्थान दिया, आसन दिया, खुद बैठिए पधारिए। अब इनको ये डर हुआ, ओहो ये तो पत्नी के रूप में अपहरण नहीं कर रहे, ये तो बड़ा भारी मुश्किल हुआ, और इनके संकल्प को कोई बदल नहीं सकता। बड़ी चिंता उनको हुई, और इसी समय में कुछ दिन ऐसे गए। इतने में एक दिन क्या हुआ, भगवान की इच्छा से दक्ष प्रजापति एक सभा में बैठा था, वहां पर बहुत सारे देवता लोग भी थे, ब्रह्मा जी भी थे, शंकर जी भी बैठे थे, और उसमें दक्ष प्रजापति गया। ब्रह्मा जी को उसने प्रणाम किया पिता के रूप में, और बाकी जितने भी देवता थे शंकर को छोड़ करके बाकी सब लोगों ने उठ करके उसका अभिवादन किया। शंकर जी चुपचाप बैठे रहे। उसने कहा ये बंदर का जैसा भक्ति, मैंने अपने बेटी का विवाह से दिया, ये हमारा बेटा लगता है, और बेटा हो करके भी मैं यहाँ आया, सब देखा जी सब लोग उठ करके स्वागत किया, और ये बंदर की तरफ में सदाचार विहीन ये ढीठ बैठा रहा, और दो चार जैसे बच्चों को सुनाते हैं वैसे अच्छी तरह से उनको शंकर जी को सुना दिया। ज्ञान नहीं है, कपाली को कोई साथ में रहता है, श्मशान भूमि में रहता है, भूत पिशाच के साथ में रहता है, कोई ज्ञान नहीं, कोई विचार नहीं, कोई आचार नहीं, बहुत बड़ी भारी हमने गलती की, वो भी नारद के कहने से अपनी बेटी का विवाह उससे किया, नैन में कभी नहीं देता, अब मैं पछता रहा हूँ। शंकर जी सब समय भगवान का अपने हृदय में ध्यान करते हैं साक्षात रूप में, इसलिए उनको किसी को स्वागत करने की जरूरत नहीं होती, जगत तो उनका स्वागत करे, सब समय भगवत भाव में लीन होने से भगवत स्वरूप ही है, भगवान से अभिन्न माने गए हैं, इसलिए ब्रह्मा इत्यादि भी उनका सम्मान करते हैं, और लोगों की तो बात क्या। प्रजापति इस चीज को नहीं समझ सका, उसने समझा जैसे ये शिव अघोरी है, हमारा बेटा के समान है, इसको उठ करके हमारा स्वागत करना चाहिए, किंतु नहीं जानता है ये सब समय जो भगवान को प्रणाम करने वाले हैं उनको किसी को भी प्रणाम करने की जरूरत, वो किसी का भी ऋणी नहीं है, नैम ऋणी चराजर, जो भगवान का शरणागत हो जाता है वो विश्व का किसी का भी देवता का माता पिता का किसी का भी ऋणी नहीं है, वो सबसे ऋण से मुक्त हो जाता है, नहीं समझाइए। और उठ करके दबदबी पायों से अहंकार से भरा हुआ वो चला गया, उपेक्षा करके उस सभा को और शंकर जी। वहीं पर कुछ भृगु में और उनके गणों में कुछ बात विवाद हुआ, इसके बाद में यज्ञ का इसके बाद में तो चला गया फिर, और वैसे ही अपने मन में शत्रुता रखा। शंकर जी को कुछ नहीं, उनको न द्वेष है किसी से, नहीं क्या है। साधारण आदमी नहीं समझता था, वो समझता है कि वो हमारा शत्रु है, मैं उसका शत्रु। शंकर जी को, वैष्णवों का ऐसा कभी नहीं होता। एक तरफा युधिष्ठिर जी को दुर्योधन इत्यादि समझेंगे कि वो हमारे शत्रु हैं, किंतु ये अजात शत्रु हैं, इनका कोई भी शत्रु किसी को नहीं समझते हैं। कृष्ण का भी वैसा ही समझिए, जो भक्तों का ही ऐसा है। इसलिए शंकर जी के मन में तनिक भी कुछ नहीं है द्वेष, किंतु वो द्वेष मानता रहा। उसने शंकर जी को अपमान करने के लिए, नीचा दिखलाने के लिए बड़ा भारी यज्ञ किया, उसमें सारे देवताओं को निमंत्रण किया, किंतु शंकर जी को नहीं गए। सारे देवता लोग जा रहे हैं, इनकी बहनें भी 27 या कितनी थी सती जी की, वो सारी बहनें अपने पतियों के साथ में वहां पर गई उसके पिताजी के यहाँ, किंतु इसको इनके लिए निमंत्रण नहीं आया, शंकर जी के लिए भी नहीं आया, इस बेटी के लिए छोटी के लिए भी नहीं आया। सबको जाते हुए देख करके ये शंकर जी के पास में गई, आपका आदेश हो तो मैं वहां पर जाऊं अपने पिता के यहाँ यज्ञ देखने के लिए। शंकर जी ने बड़े प्रेम से समझाया, पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ और
मामा
के यहाँ बिना निमंत्रण में जाने में कोई भी असुविधा नहीं। अपने पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ, मामा भी पिता ही लगता है, बिना निमंत्रण के भी जा सकते हैं, तुम जा सकती हो। किंतु एक बात है, वो हमसे विरोध मानता है, इसलिए विरोध मानने पर वहां जाएगी, हमारा अपमान करेगा, तुम सह नहीं सकेगी, बड़ा अशुभ हो जाएगा, इसलिए तुम्हारा जाना अच्छा नहीं है, मैं नहीं अच्छा। किंतु उनके मन में ये था, शंकर जी ने हमें पत्नी के रूप में त्याग दिया है, तो इस शरीर को रखने के खिलाफ क्या, मूल ग्लानी यहां पर थी, ये ग्लानी की ये बात नहीं थी। उसने सोचा कि अपने पिता के यहां जाएंगे, अपनी बहनों से, अपनी मैया से मीठी मीठी बात करेंगे, और यदि हमारे शंकर जी का अपमान हुआ तो यह शरीर को छोड़ना है, वहीं पर छोड़ दूंगी। इसलिए ऐसा सोच करके उन्होंने कहा, हमको तो जाना ही है, आदेश दें और न दें। बस क्रोध से भरी हुई पृथ्वी पर धमक देती हुई पैरों से और चल पड़ी। शंकर जी ने देखा जैसे जो होनी है वही होना है। उन्होंने अपने सवारी जो नंदी का है बैल को भेज दिया और अपने कुछ अनुगामियों को भी भेज दिया, उनको उस पर बैठा करके और उस यज्ञ भूमि में ले गए। वो जब वहां पर पहुंची यज्ञशाला में, पिता ने मुख फेर दिया, आदर नहीं किया, जिसको इतना प्यार करता था आज उसके तरफ में बातचीत नहीं की। उसके बहनों ने डर के मारे से बातचीत नहीं किया, ये पिताजी बिगड़ जाएंगे। केवल मैया आई और दो एक बहनें आई, थोड़ी सी वार्तालाप उससे, इसका मन और भी व्याकुल हो गया। यज्ञशाला में गई, देखा ये सबके लिए स्थान है, हमारे पति के लिए स्थान नहीं। अच्छा, पति के लिए स्थान नहीं है, इतना अनादर। इस दुष्ट के साथ संबंध जो हमारा शरीर है, वो सब शरीर को नहीं रखना है। भगवान का शत्रु, शंकर जी का शत्रु, और उससे हमारा ये शरीर उत्पन्न हुआ, इस शरीर को मैं कभी नहीं धारण कर सकती। बस वहीं पर बैठ गई, और बैठने के बाद में जुगासन पर बैठी, और साथ ही साथ उसमें अपने आप अग्नि पैदा हुई, और उस अग्नि से चल गई, आग लग गई। शंकर के दूतों ने देखा और यज्ञ को भी विध्वंस कर दिया, ऋषि मुनियों को भी दांत तोड़ दिए, भृगु के दांत तोड़िए, किसी की दाढ़ी उखाड़ ली, किसी का दांत तोड़ दिया, उषा का, और कुछ कुछ किया, यज्ञ ध्वंस हो गया, और अंत में उस प्रजापति का सिर भी काट दिया और उस आग में स्वाहा कर दिया, जला दिया। फिर तो चारों तरफ में बड़ी धूम मच गई। फिर ब्रह्मा जी को पता लगा, ब्रह्मा जी आए, विष्णु को आराधना करके बुलाया, विष्णु भी आए, सब मिलकर के उसमें शंकर जी के पास में गए। शंकर जी समाधि में बैठे हुए हैं, एकदम निर्विकल्प समाधि में। प्रतीक्षा की बहुत दिनों तक, आराधना की, तो फिर समाधि जब भंग हुई तो दोनों ने प्रार्थना की। विष्णु तो विष्णु की बात सुनते हैं, उनका सारा क्रोध तो पहले ही शांत है, कभी उनको क्रोध नहीं, कभी और शांत हो गए, आपका क्या, आपकी क्या सेवा कर। तो उन्होंने कहा है जो अब एक बात करें, ये सती जी अब आप समाधि में हजारों वर्ष थे, अब वो हिमाचल के यहाँ कन्या होकर के पार्वती रूप में, हम लोग की इच्छा है आप ग्रहण करें और दक्ष प्रजापति का जो यज्ञ था वो आप पूरा कर दीजिए। बड़े अच्छी बात है, तो ठीक है, पहले दक्ष का जो यज्ञ है पूरा किया जाए, सारे समस्त सभा समान ठीक किए गए और खुद शंकर जी वहां आए। सिर तो है नहीं, वो कैसे पूरा करेगा? उन्होंने कहा जो कोई सामने मिल जाए उसी का हाँ सिर काट करके ले आओ और उसी के ऊपर हम जोर देंगे। एक बकरा जा रहा था, बकरा माने गोट, मेल गोट जा रहा था, हाँ सी गोट नहीं, सी गोट जा रहा था। बड़ी बड़ी दाढ़ी, सिंह थे, शरीर से दुर्गंध आ रहा था और उसको देखा गया, किसी ने उसका सिर काट लिया और लेकर के इनको दिया और लेकर के शंकर जी ने उसके ऊपर में रख दिए और रख करके मंत्र पढ़ा और बरसात ही साथ में जीवित हो उठा। और अब तो साष्टांग प्रणाम करके स्तव स्तुति शंकर जी का करने लगा। क्यों ऐसा किया? जो लोग मनुष्य हैं भगवान का भजन नहीं करते, भक्तों का आदर नहीं करते, जिनके अंदर में भक्ति नहीं है, वो मनुष्य का शरीर होने पर भी बकरा है, इसलिए उसमें कोई भी अंतर नहीं, बहुत कामी होता है, क्रोधी होता है। इसलिए जो भगवान का भजन नहीं करते, गुरु वैष्णव का आदर नहीं करते, हरि कथा नहीं सुनते, तो उनकी क्या दुर्गति होती है? मनुष्य होने पर भी वो पशुओं में सबसे गए बीते हैं, गधे कह लीजिए या ये बकरे कह लीजिए। अब उसका अभिमान जो सारा था ये दूर हो गया, अभिमान दूर होने से अब उसका हृदय निर्मल हो गया और उनके चरणों में गिर करके रोते 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 प्रार्थना करने लगा, आप हमें क्षमा कर दीजिए। इसी प्रकार से ये दंड देना उसके लिए परम मंगल हुआ। यहाँ पर बहुत सी चीजें शिक्षा की है। पहली बात, गुरु में यदि सद्गुरु है, पहले गुरु देख करके करो, जहां तहां सिर मत नवाओ, देखो जिसे सत्य है हमारा कल्याण कर सकता है तब गुरु करो। यदि किसी प्रकार से वो गुरु कर लिया और अब सत्संग के द्वारा हमें कुछ बुद्धि हुई ये इस गुरु से हमें भगवत प्रेम नहीं होगा, परमात्मा में नहीं बढ़ सकते हैं, ये भगवत विरोधी भी है, भक्तों का विरोधी है, भक्ति नहीं करता है, तत्क्षणात उसे छोड़ दो, छोड़ दो उसे, एक सेकंड मत देरी लगाओ और शुद्ध ऐसा गुरु करो जिसको भक्ति है, तत्व ज्ञान से परिपूर्ण है, ऐसे संसार से परम विरक्त हैं, ऐसे गुरु को तत्क्षणात वैष्णव गुरु को करो। वैष्णव मुखोद्गीर्ण पूतम हरि कथामृतम श्रवण नयन कर्पतव्यम सर्पोचित, जो वैष्णव नहीं है उसके यहां से मंत्र डालो। पुनः ऐसे योग्य अधिकारी जो वैष्णव हो उनसे फिर से उसे दीक्षा दी। यदि तुमने मान लिया गुरु किया किंतु देखते हो कि ठीक है विरोधी नहीं है भगवत, तत्व ज्ञान परिपूर्ण नहीं है, हमें परमात्मा नहीं ले जा सकते, तो क्या करो, उनको आदर देते हुए उनसे उच्च कोटि के किसी महात्मा से जाकर के पुनः सत्संग करके शिक्षा गुरु के रूप में जैसे भी हो उनसे तत्व ज्ञान लाभ करके भगवान का भजन करो। भगवान का भजन करना ही हमारा मूल उद्देश्य है, गुरु करना ही उद्देश्य नहीं है। गुरु किस लिए होगा? भगवान के तरफ में उसके चित्त वृत्ति को लगा दे। कृष्ण की सेवा करने से, कृष्ण तत्व का ज्ञान होने से हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, सारी समस्याओं का हल हो जाएगा, नित्य काल के लिए हम सुखी हो सकते हैं। ऐसा तत्व को, ऐसा गुरु पा करके, यदि गुरु मिल गया, ऐसा तुमने गुरु किया, अब तुम्हारा गुरु शुद्ध है, उसकी अवज्ञा मत करो। भगवान जैसा हो सकता है दोष हो जाता, छिपाओ मत उनसे। अंततः एक गुरु ऐसा हो जो तुम अपना हृदय खोल करके उनके सामने रख सकते हो, ऐसा तुमको एक गुरु होना चाहिए। गुरु माता पिता से भी लाख गुण करोड़ों गुण दयालु होता है, सत्य होता है। वो कृष्ण भक्ति दे सकता है। माता पिता यदि शुद्ध वैष्णव हो तो दे सकते हैं, और यदि नहीं है तो नहीं दे सकते हैं। संसारिक द्रव्य इत्यादि ये सब दे सकते हैं, इसे बहुत गुरु चाहता है। इसलिए ऐसा गुरु यदि मिल जाए, खबरदार अवज्ञा मत करो। यदि किसी कारण से हो गया, फिर छिपाओ मत, अनकंडीशनली उनके शरीर शरणागत होकर के और क्षमा मांग करके निरंतर भगवत भजन करो। इस जगत में आने का उद्देश्य क्या है, पहले तो स्थिर करो क्या है। बिनु हरि भजन न भवतरीय, यह सिद्धांत अपील। तुलसीदास जी ने 9 उदाहरणों के द्वारा बतलाया। आकाश में फूल खिल जाए भले ही, अंधकार सूर्य को नष्ट कर दे, खरगोश को सिंह निकल आए, और कमठ के पीठ पर, कछुए के पीठ पर केस उगाए, ये सब संभव है। पानी को मंथन करने से भले ही घी आ जाए, रेती को पेसने से भले ही तेल आ जाए, किंतु बिनु हरि भजन न भवतर, यह सिद्धांत अपील। ऐसा श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है, वेदों में भी कहा गया है, सर्वत्र एक ही बात। कुछ लोगों की शंका ऐसी होती है, जीवात्मा और परमात्मा में कोई भी अंतर नहीं है, एक ही चीज है। अभी मुक्त बद्ध होने पर अभी जीवात्मा परमात्मा का भेद है, मुक्त होने पर हम भी परमात्मा हो जाएंगे, ऐसा मत सोचो। उपनिषदों में कहा गया, चेतनानाम और क्या, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम। नित्य जीवात्मा है, उनमें परम नित्य कौन है? भगवान है। जो परम नित्य है, नित्य में भी नित्य है, नित्यो नित्यानाम चेतन, बहुत से चेतन है। हम लोग अलग अलग एक एक यूनिटी है, किंतु भगवान से संबंधित उनसे प्रकृति में है, इसलिए हम उनके पार्ट पार्सल और उनके नित्य दास है। हम इसको भूल करके कैसी दशा, इसलिए गुरुकरण की जरूरत है। जो लोग नहीं समझते हैं कि हम ऐसे ही बुद्धिमान हैं, एक हारमोनियम बजाने के लिए शिक्षक की जरूरत है, एक रुपया उपार्जन करने के लिए, बिजनेसमैन बनने के लिए गुरु की जरूरत है, तो इसके लिए जरूरत नहीं है। जैसे जीवन मरण का संबंध है, जिससे है जरूरत। एक समय की बात है, और चलो हर्ष कीर्तन कर दो, तो कीर्तन कर दो। आप लोगों में से कोई और कीर्तन कर सकते हैं तो आप लोग कर सकते हैं, या महिलाओं में से भी हारमोनियम भी है, कोई करना चाहेंगे आप लोगों में से, या आप लोगों में से यदि कीर्तन करने, उस दिन देख रहा था जो हारमोनियम बजा रहे थे, चलो तुम ही करो। सुखदेव गोस्वामी को भागवत सुनाते हुए कह रहे हैं, ये सारे उपाख्यान सुखदेव गोस्वामी जी उनको बतला रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, संसार की जड़ आसक्ति है, इस संसार में माया में आसक्त मत हो। माया किसे कहते हैं? जो नहीं है, जा मा या, जा माने जो, मा माने नहीं है, उसको वही समझ करके आसक्त होने का नाम माया है। माया दो प्रकार की है, एक माया भगवान की शक्ति है जो विमुख जीवों को संसार में पीस कर उसे शुद्ध बना करके फिर भगवान की सेवा में लगा देती है, और वो शक्ति है भगवान की ने? और एक है माया जो मैं नहीं हूं उसमें मैं की बुद्धि, और जो मेरे नहीं है उसमें मेरे की बुद्धि लगा देती है, आसक्ति करा देती है, इसका नाम है माया। जैसे यह संसार माया के द्वारा है, जिसमें सूर्य चमक रहे हैं, चंद्र हैं, जिसमें राम का अवतार हुआ, कृष्ण का अवतार हुआ, जिसमें वेद उपनिषद शास्त्र रामायण पुराण है, ये संसार झूठा नहीं है। पहली बात, जो लोग ये कहते हैं कि संसार झूठा है वो ठीक से इस तत्व को नहीं समझते, क्योंकि भगवान की इच्छा शक्ति से ये प्रकट हुआ है। भगवान ने संकल्प किया, क्या संकल्प किया? जगत हो, और उनकी संकल्प शक्ति से माया ने इस जगत को रचा, इसलिए कैसे झूठा हो सकता है? यदि ये झूठा हो तो जो उपदेश गीता भागवत में दिए गए हैं, अभी जो उपदेश दे रहे हैं, से ये जो झूठा है, ये संसार जो कहते हैं वो भी झूठे हैं, तो उनकी बात भी झूठी हुई, अर्थात वो सत्य हुआ, ये जगत सत्य है। आया समझ में? एक आदमी कह रहा है जैसे जगत झूठा है, तो सबसे पहले तो वो झूठा है, तो इसलिए वो कह रहा है जगत झूठा है, इसलिए वो बात झूठी है, इसलिए जगत सत्य है। जगत झूठा नहीं है, क्षण भंगुर है, ये भगवान की स्थिति है, उसके सत्य संकल्प से निकला है, इसलिए सूर्य चंद्र झूठे नहीं है, ये कोई भी चीज झूठी नहीं है, है क्षण भंगुर है, और ये भगवान की प्रॉपर्टी है, उसमें तुम अपना ये प्रॉपर्टी मत बनाओ, मैं भुगता हूं ये मत रखो, तुम्हारा जो कर्तव्य है पालन करो। ये समस्त जितने भी फर्नेलिया हैं, जितने भी वस्तु हैं, ये भगवान की सेवा के लिए, भगवान की सेवा के उपकरण है, तुम इसे भगवान की सेवा करो, तुम भी भगवान का सेवक है, ये तो बात ठीक है। और मैं कौन हूं? मैं तुम्हारा दास हूं, और मेरा क्या है? आप ही मेरे हैं, ये सब उसी संबंध से, ये सब मेरे हैं क्योंकि आप ही के उपजाए हैं, इसलिए ये मेरे हैं, इस नाते ये सभी सेवक है भगवान के, मैं भी सेवक हूं, इसलिए संबंध हुआ ना, ये गाढ़ा संबंध हुआ, यहां तक तो ठीक है। किंतु ये मेरी स्त्री है, मैं उसका पति हूं, ये मेरे पुत्र हैं, ये घर मेरा है, ये संपत्ति मेरी है, ये माया है, ये झूठी है। कैसे? यदि तुम्हारी स्त्री है, कब से स्त्री हुई? एक तो 20-22 वर्ष की उम्र में शादी हुई, तो इसके पहले शादी तुम्हारी स्त्री थी? आके एक कल्पना करके मान लिया, उसकी के अंदर में जो आत्मा है, तुम्हारे अंदर में जो आत्मा है, एक ही आत्मा, एक ही जैसी है, उस आत्मा के साथ में आत्मा की शादी कैसे? इस चीज को समझो, ये शादियां इत्यादि व्यवहारिक हैं, न जानने के वजह से है। एक लड़के से एक लड़के की शादी होगी कि नहीं, और एक लड़की से एक लड़की की शादी होगी कि नहीं, आजकल समलैंगिक हो रहा है, सुनते हैं, किंतु लड़के से लड़की लड़की की शादी कैसे होगी? तो हमारी जीवात्मा स्त्रीलिंग है, और आपकी भी स्त्रीलिंग है आत्मा, तो आत्मा में शादी कैसे होगी? हाँ, शादी होगी कृष्ण के साथ में। एक पुरुष है भगवान और बाकी सब उनकी माया से शक्ति से उत्पन्न हुआ है, इसे सभी शक्तियां हैं। ये तो थ्योरी ठीक है, किंतु ये न जानने की वजह से एक आत्मा को स्त्री का सुंदर रूप दे दिया और एक आत्मा को लड़के का रूप दे दिया, दोनों को शादी कर दिया। ये जैसे कि अभिनय मंच में होता है, लड़के अभिनय कर रहे हैं, उसमें एक को सीता बना दिया एक लड़के को और एक लड़के को राम बना दिया, फिर उनकी शादी हो गई। ये शादी ठीक है? ये तो अभिनय के लिए था। ऐसे ही समझो हम सभी आत्माएं हैं, सभी पार्ट और पार्सल हैं भगवान के। ममई वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, सारे जीव हमारे अंश हैं। ये हमने समझ रखा है, ये मेरी बीबी है। अरे बीबी है तो पहले से क्यों जन्म से नहीं क्यों बीबी रही? अच्छा जब डाइवोर्स कर दिया तो तुम्हारी बीबी है कि नहीं? हाँ, 10 बार डाइवोर्स आजकल हो रहे। वो कौन से ग्रीन बुक है ना, कौन सी उसमें सबसे शादी करने वाले 100 तक पूरा, अब 101 करने की तैयारी में है। तो इसलिए ये सब व्यवहारिक चीजें हैं, ये भगवत उपासना करने के लिए ये व्यवहार बनाया गया है। असल में कोई किसी का स्त्री कोई पति और पुत्र और नहीं है, सभी हम भगवान के पुत्र हैं। अमृतस्य पुत्रा, सभी हम उसी अमृत कृष्ण के भगवान के पुत्र और पुत्रियां हैं। इस चीज को पहले समझा जाए, इसलिए कृष्ण ही हमारे हैं, वही हमारे सर्वस्व हैं। बाकी ये जो चीज है ये कुछ व्यवहारिक है, जगत में रहने के लिए कुछ व्यवहार जरूरत है। जब वो काम सिद्ध हो जाएगा तो ये अपने आप छूट जाएगा। आप चाहें ना चाहें 100 वर्ष के बाद में स्त्री पुरुष का संबंध तो ये दूर हो ही जाएगा। कहोगे एक जन्म और तो एक जन्म और हो जा सकता है, अधिक जन्म तक नहीं होने का। एक ऋषि थे ऋषभदेव, भागवत की कथा। उनके 100 पुत्र थे, 100 पुत्रों में सबसे बड़े भरत जी महाराज जी थे, वो भगवान के परम भक्त थे। और उसमें 81 जो थे वो ब्राह्मण स्वभाव के स्मार्ट ब्राह्मण थे, और 9 थे नव जोगेंद्र माने जिनकी जाति पाती नहीं, आत्म तत्व को संपूर्ण रूप से अनुभव करने वाले जोगी थे नव जोगेंद्र। जाति पाती से बहुत ऊपर सत समय आत्मा में प्रतिष्ठित और तत्व ज्ञान से परिपूर्ण वो लोग थे नव जोगेंद्र। ये एक ही पिता के कुछ क्षत्रिय हुए और कुछ ब्राह्मण हुए, कुछ जाति पाति से ऊपर हो गए हैं। ये कैसे संभव? पहले ऐसा ही होता था, आज जैसा नहीं। ये ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा और क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय होगा, डॉक्टर का बेटा पढ़े नहीं चाहे न कुछ करे वो डॉक्टर ही होगा, इंजीनियरिंग पढ़े न पढ़े बाप इंजीनियर था बेटा भी इंजीनियर ही होगा। ये गलत धारणा। ब्राह्मण इत्यादि क्षत्रिय इत्यादि चतुर्वर्ण मया सिस्टम गुण कर्म विभाग सब, गुण और कर्म पर ये सब आधारित होता था। रावण ब्राह्मण का लड़का होने पर भी राक्षस कहलाया, और राक्षस का पुत्र प्रहलाद महाराज होने पर भी वो ब्राह्मण का भी गुरु कहलाया। कौवा एक जगत का गुरु बन गया काकभुसुंडी, हनुमान जी बंदर होकर के भी विश्व ब्रह्मांड के जगत गुरु हैं। इसलिए इस पर निर्भर नहीं करता था, गुणों के ऊपर में सब कुछ था निर्भर, उसी के अनुसार में ये सब होता था। पीछे से जब इस ज्ञान को तत्व को भूल गए तो ब्राह्मण का बेटा चाहे मुखर्जी एंड शू कंपनी के जूते का कारोबार कर रहे हैं, मदिरा पी रहे हैं, छल चतुराई झूठ पैसे पैसे के लिए झूठ बोलते हैं, तो भी चटर्जी हैं या मुखर्जी हैं। और चमार का बेटा यदि भले ही उच्च तात्विक विचार का आत्मज्ञानी है तभी उसको चमार समझेंगे, यह गलत बात। आत्मज्ञान के ऊपर में ये सब चीजें थी। धीरे 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 ये समय बीतता गया, युग बीतते गए, कलयुग आता गया और ऐसे ही धीरे धीरे बस सब चौपट होने लगा। हमारी जातियां बड़ी सांस्कृतिक भित्ति के ऊपर में बनी थी। ये सहज रूप में सबको भगवत तत्व ज्ञान हो, आज हम उसे तोड़ रहे हैं, पैर तोड़ रहे हैं, उसके रीढ़ तोड़ रहे हैं। जातिवाद ही हमारी समस्त बुराइयों की जड़ है, बात ये ठीक नहीं। बनाई थी अच्छी चीज के लिए, लोग समझ नहीं सके, इसका पालन नहीं कर सके, इसलिए इसमें कुछ बुराइयां आ गई। वो प्रथा बुरी नहीं है, कांग्रेस बुरी नहीं है। हमारे भारतवर्ष में कांग्रेस के जो मन नहीं मानने वाले सिद्धांतों को, कांग्रेस ही हमारे गांधी जी थे, हमारे जवाहरलाल जी थे, हमारे राजेंद्र बाबू जी असल कांग्रेसी थे, इसमें बुराई नहीं है। उसको जो नहीं मानते हैं उनके वसूलों को। इसीलिए सनातन धर्म में ये जो जाति प्रथा बहुत उन्नत चीज थी, सबका कल्याण हो, उसमें लेबर डिवीजन इत्यादि गुणों के अनुसार में सब चीज का डिवीजन था, जिससे कि सभी लोग उन्नत हो, आत्मज्ञान की तरफ में बढ़े। आज ये सब, आज लड़ाई क्यों हो रही है? जाति प्रथा तो टूट रही है, क्यों लड़ाई हो रही हो, क्यों रही? आज कांग्रेस और वो सब लड़ रहे हैं, यहाँ पर ये वहां पर आक्रमण करने के लिए हमारे पहुंच गए हैं, कहां युगोस्लाविया में, किस लिए? वहां के लोग मुसलमानों को मार रहे हैं, क्यों क्यों मार रहे हैं, बात क्या है? ये सब तत्व ज्ञान नहीं होने से। महाराज भरत के, भरत जी भी ऐसे ही एक पिता के बहुत संतानों में से, वो क्षत्रिय तो थे किंतु परम भगवत भक्त थे। आधी आयु जब हुई 50 वर्ष, तो उन्होंने संसार को मलवत त्याग कर दिया। आधी आयु माने 50,000 वर्ष की उस समय आयु उनकी थी, तब उन्होंने संसार छोड़ दिया। मलवत, मलवत माने क्या? एक आदमी को खूब टट्टी लगी हुई है और कहो जरा बैठो, उसको फूल की माला पहनाओ और उसको टट्टी अब निकली, अब निकली, और उसको रसगुल्ले सामने दो और पंखा चलाओ उसको और खूब सम्मान दो, आप दो मिनट और बैठ रही है, बैठेगा? लाख आप दीजिए, लाख रुपए दीजिए, एक मिनट बिना अब तब निकली। जब टट्टी जब हो गई ना, तब आप शांति से बैठेगा। ऐसे संसार जिनको मलबत लग रहा है, टट्टी जैसी, उसकी उपलब्धि कर रहे हैं। ये संसार ऐसी घोर नरक है अथवा आग लगा हुआ कुआं है ये संसार। इसलिए आदि उम्र में अपने बच्चों को, स्त्री को, धन संपत्ति सारे भारत का उन्हीं के नाम के ऊपर में भारत वर्ष पड़ा है। भारत नाम आया कहां से? भारत, भा माने प्रकाश, आत्मज्ञान का जहां प्रकाश है उसमें सभी लोग रत है, वहां के निवासी हैं, उसको कहते हैं भारत। आत्मज्ञान का प्रकाश है, भक्ति का प्रकाश है, उसको कहते हैं भारत। उन्होंने अपने राज्य में सर्वत्र भक्ति का प्रकाश किया, प्रचार किया, आत्मज्ञान का विकास किया, इसलिए उनका नाम भरत हुआ। भरत से ही इसका नाम भारत हुआ। छोड़ करके चले गए जंगल में, किंतु देखो कुछ बुराइयां भी है इसमें। आसक्ति पहले बतलाया, यदि संसार में आसक्ति होगी तो सब चौपट हो जाएगा। गए, घर बार छोड़ दिया, पुत्र स्त्री माता पिता भाई बंधु सबको छोड़ दिया, राज्य भी छोड़ दिया, सब एकदम शक्ति की तरफ में छोड़ दिए। चले गए एकांत में, नदी के किनारे बैठ करके भजन कर लीजिए। कहां नदी? यहाँ पर गंगा और सोन भारतवर्ष में है, गंडक नदी उसी के तट पर, जहाँ पर सालग्राम होते हैं जिस गंडकी शिला में, उसी पवित्र स्थान में बैठ करके निर्जन स्थान में भजन करते थे। एक दिन की बात है, अपने भजन में एकदम तल्लीन थे, आराधना में, भगवत आराधना में। इतने में एक शेर की आवाज सुनी, बड़े जोर से गर्जन की, देखा जी सामने एक हिरणी चर रही थी निश्चिंत होकर के, और उसी समय में वो कूद करके छलांग मार करके निकट आया, बहुत जोर से गर्जन किया, उस पर आक्रमण करने के लिए उसके ऊपर में कूद पड़ा। हिरणी ने कोई अपना बचाव नहीं देकर के झट लो, वो तो बाघों से भी सिंहों से भी दो अंगुल अधिक कुत्ती है। बस उसने भी छलांग लगाई। सामने में नदी थी छोटी सी, जब छलांग लगाई उस गर्भवती थी बीच धारा में जबकि पहुंची तब वो झट उसका बेटा हिरण उसे निकल करके गर्भ गिर गया और वो उस पार में गिर करके छटपटाती हुई करुण नेत्र से अपने बच्चे को उसमें गिरते हुए देखा। हाय हाय हमारा मैं तो गई हमारा बेटा भी गया। और वहां जाकर के उसके तरफ में देखती हुई और वो मर गई। वहां पर भरत जी वहीं से देख रहे थे ये दृश्य। हिरणी की नजर उन पर पड़ी, हमारे बच्चे को तुम बचा नहीं सकते। वो उठ करके भजन छोड़ करके और नदी में आए और डूबते उतराते हुए बच्चे को उन्होंने गोदी में ले लिया और अपने आश्रम में आए। अब ले आने से बचाया प्राण, अब उसको बचे कैसे? कहीं से दूध वूध की व्यवस्था की, बच्चे को दूध पिलाने लग गए और अपना बच्चा ही मान लिया। अब वो छोड़ देते बच्चे को तो वो छलांग मारता हुआ छोटा सा बच्चा झट उनकी गोदी में बैठ जाता। कभी सिर से ऐसा करता जी हमें प्यार छोड़ करके और तुम साधन समाधि लगा रहे हो, बस ऐसे ऐसे करता, बस उसको पुचकारते हुए गोदी में ले लिया। समाधि तो गई, धीरे धीरे इतना स्नेह और आसक्ति उस पर हो गया और उस बच्चे का भी इन पर आसक्ति हो गई कि उसके बिना रह नहीं सकता। हाँ ये हिरण कितना सुंदर है, ये तो साधारण हिरण नहीं है, इसमें तो ऐसे लक्षण है कि जहां ये होते हैं वहीं पर अश्वमेध यज्ञ होता है, बहुत पवित्र है। हमारा सौभाग्य जो ऐसा हिरण हमको मिल गया। बस भजन धीरे 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 माला की झोली भी रह गई और शास्त्रों का अध्ययन भी चला गया, ध्यान समाधि भगवान का मंत्र जपना भी, जहां बैठते बस कहने कहां से आकर उनके गोदी में बैठ जाता और सिर से खुजलाता, सिंह तो अभी आई नहीं थी। धीरे धीरे आसक्ति और जमती चली गई और भी भजन चौपट हो गए, जो बैठते थे वो बैठना भी खत्म हो गया। आप लोग भी सावधान रहेंगे, आए थे हरि भजन को और क्या करने लगे? ओ तन लगे कपास। जीवन निर्वाह करके हम भजन करेंगे ऐसा सोचा और ऐसा जॉब में लगे कि अब फुर्सत ही नहीं मिलती है एक मिनट की, संध्या निक भी नहीं करते, एक माला जपते थे पहले अब वो भी बंद हो गया। सोचो ये किस लिए आया, किस लिए भाग छोड़ करके आए, किस लिए? जीवन निर्वाह के लिए आए, अपना धर्म कर्म छोड़ने के लिए नहीं। अभी हम भजन करने आते हैं, हरिनाम ले लिया, दीक्षा ले लिया गुरु से, एक दो गुरु भाइयों में बनती नहीं, ठन जाती है। किस लिए, किस लिए ठनती, जरूरत क्या है? दया होनी चाहिए, सहिष्णुता होना चाहिए। बड़े वाले हैं छोटे को देखेंगे पुत्र की भांति, भाई की भांति, और छोटे वाले क्या देखेंगे? पिता के समान, गुरु के समान देखेंगे। यथा योग्य दूसरों को आदर देंगे ना, उद्देश्य तो भजन करना है, किंतु लगे गए क्या, ओट न लगे कपास। जीव का निर्वाह के लिए हमको उतना ही जरूरत है जितना में जीवन का निर्वाह होगा, बाकी हम भजन करेंगे, आत्मा की उपलब्धि होगी। यदि ये नहीं हुआ तो बेकार का ये मनुष्य जन्म गया। क्या है दुर्लभ, दुर्लभम सुदुर्लभम
सुदुर्लभम
लब्धवा सुदुर्लभ एकदम बहु संभवंते मनुष्य मार्थदम मनुष्यम अपि अधीर तुर्लम न जतित पतित अनुमित जावर नर्तल कर फल। यह नर्तल का यह मनुष्य का जो शरीर है इसका फल भोगों का भोगना नहीं है। यदि आत्मज्ञान नहीं हुआ, भगवान की भक्ति नहीं हुई, तो ये बेकार का ये मनुष्य जन्म गया। देश ईश बिनु हेतु सने, मनुष्य शरीर कोटि कोटि जन्मों के बाद में मिला है, आप लोग नहीं समझ रहे हैं क्या? ये ऐसे ही मिल गया केवल मात्र भगवत भजन करने के लिए, आत्मानुभूति के लिए है, और बाकी शरीर के पालन पोषण के लिए कुछ जॉब करने इत्यादि की जरूरत है। नहीं तो देखो जो उसका एक दिन का भी लेकर के नहीं जाना है, अभी भगवान ने समय दिया है, घंटी बजेगी चार तीन चार, जब दांत टूटने लगेंगे एक घंटी, आंख की रोशनी कमी एक घंटी, केस पकने जाएगा अंतिम घंटी, और इसके बाद में गले घर घर आएंगे तब अंतिम घंटी समझो, कभी होश नहीं आता। और एक पैसा भी लेकर के नहीं जा सकते, एक चीन भी नहीं, एक केस भी नहीं, अपनी बीबी और बच्चा और ये घर बात तो छोड़ो, किस लिए? इसलिए वो गए सब छोड़ करके और भजन करने के लिए, भजन भी कर रहे थे, किंतु एक हिरण का बच्चा आया, अपने बेटे को, बाप को, स्त्री को, सबको तो छोड़ा एक घर में, और यहाँ पर एक नई चीज जुटा लिया, हिरण का बच्चा, एक डॉग ले लिया। अब होगा क्या अंतिम दशा? उसी समय में कुछ दिनों में इनकी मृत्यु आ धमकी, और ये हिरण छलांग मारता हुआ हिरणियों के दल में चला गया। हाँ, हिरण कहाँ गया, कहाँ गया, सिर खा लिया, क्या हो गया? अब उसी की चिंता में लगे, और इसी समय मृत्यु आई, और हिरण की चिंता करते करते हुआ क्या? आप लोग भी समझिए, यदि डॉग रखेंगे ना और डॉग की चिंता करेंगे तो मर करके डॉग होंगे, ये समझ रखेंगे। एक है गॉड, जी ओ डी, और दूसरा है उसका विपरीत। यदि भगवान का चिंतन किया तो अजर अमर होकर के इस संसार में छोड़ करके सदा के लिए वैकुंठ धाम में रहेंगे, सुखी रहेंगे, भगवत चिंतन कर रहे थे। और ठीक उसके विपरीत यदि डॉग या संसार के किसी की चिंता करते हैं, मर करके जरूर वही होना होगा। यदि एक आदमी पुरुष है, स्त्री की चिंता करते 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 मरा, तो वो ही स्त्री बन करके आएगा। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, एक दो नहीं, हजारों उदाहरण हैं, ये झूठ नहीं। और पुरुष यदि स्त्री पुरुष की चिंता करते करते मरी तो क्या होगा, वो भी ऐसे ही बने, पुरुष बदले बल्कि गधे और गधी बनेंगे। इस चीज को समझ रखो, इसलिए इस जन्म में अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए अनाशक्त हो करके भगवान का स्मरण करके अपना जीवन का निर्वाह करो। बाल बच्चों को देखो, ये प्रभु के दिए हुए संतान है, हम भी भगवत सेवक हैं, ये भी इस रीति से पालन करो, किसी से द्वेष हिंसा आसक्ति मत करो, आसक्ति और प्रेम हो तो भगवान के चरणों में। देखो ना उनका क्या हुआ, बन गए अब हिरण, दूसरे जन्म में हिरण बनने के बाद में अब कुछ ऊपर तक आए थे, रति तक उनके अंदर में भाव तक पैदा हुआ था, कुछ ऊपर उठ गए थे, इसलिए मरने पर दो तीन जन्म के लिए तो वो बंद हो गया, किंतु उनकी स्मृति रही, जब मैं पहले जन्म में ऐसा किया था हिरणी बना, हिरण बना, अब ऐसा नहीं करेंगे, इसलिए हिरणों के साथ नहीं मिलकर के साधु संतों में बैठने लग गया। कुछ दिन के बाद समय आया, गंगा नदी में खड़ा होकर के पानी पी करके और शरीर को छोड़ दिया। तीसरे जन्म में ब्राह्मण का बालक हुआ, वही भरत जी, और किसी से बोलते नहीं, जब बड़े हुए पांच सात वर्ष का उपनयन कर दिया गया, उपनयन को उतार करके फेंक दिया या वैसा ही पड़ा रहा, गायत्री मंत्र भी ओंकार भी नहीं उच्चारण कर सकते थे, भीतर में भले ही करते हो ऊपर से नहीं किया, पिताजी जितनी शिक्षा दे कुछ को भी ग्रहण नहीं किया, पागल बने रहते जहां तहां बैठे रहते। पिताजी ने भाइयों कहा, जी मैं तो अब मर रहा हूं, तुम लोग बच्चे को देखना, इसका पालन पोषण करना, वो तो चले गए। अब इन लोगों ने उसको मूर्ख देख करके और उसके साथ में अवज्ञा करने लगे, उनकी स्त्रियां लपसी बनाते, लपसी जानते हैं क्या, चोकर और सब चीजें एक साथ मिला करके उबाल करके उसको दे देती, जैसे गाय भैंस को देते, और वो खा करके मोटा तगड़ा बना रहता, कोई चीज की चिंता नहीं, भगवत चिंतन की तरह से करता, लोग समझते जी मूर्ख है। कभी खेतों के किनारे उसको कहते, ये तो करेगा तो कुछ नहीं, पढ़ा लिखा कुछ नहीं, इसको मेड़ पर बैठा दो, खेत की रक्षा करे, तो रखवाली करने में चुपचाप भगवान चिंता कर रहा है, और वो जो हाँ जो चिड़िया खा रही है, कुछ खा रही है, कोई चिंता नहीं। एक डकैतों का दल उसे पकड़ करके बलि देने के लिए, आज यदि मिल गया माल हाथ में तो आज बलि देंगे, तो आज माल बहुत हाथ लगा, तो किसी को खोजते ढूंढते ढूंढते एक उसको आदमी मिल गया, किंतु आदमी भाग गया, तो देखा जैसे भाई कोई देखना चाहिए, खोजते खोजते ये रात में मिले, देखा जी 16 वर्ष का बड़ा सुलक्षण, जरा गंदा मंदा लगा हुआ है, किंतु है बड़ा सुलक्षण, बड़ा सुंदर। पशु उसको पकड़ कर ले गए, ये भी उसके साथ में जा, उनको गुड़ खिलाया, गुड़ खा लिया, चना खा लिया, गले में लाल कपड़ा बांधा, वो उसको भी कोई बात नहीं, खा रहे हैं बड़े आराम के साथ, देख रहे हैं कि ये हमें बलि देंगे। बस लकड़ी का यूप होता है, उसमें गले में लगा करके लकड़ी की कील ठोक दी और फंसा उठाया उसे मारने के लिए, तो भी कोई चिंता नहीं। जिसको कृष्ण रक्षा करते हैं उसको कौन मार सकता है, और जब कृष्ण ही नहीं रख सकते तो उसको कौन बचा सकता है। राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण छोड़ दिया प्रभु के हाथ में, मृत्यु होगी तो मरेंगे, नहीं तो नहीं मरेंगे। भगवत चिंतन करते करते इतने में दुर्गा जी उठी, उनका वो लिंग फट गया मूर्ति, और उसमें खूब अट्ठाहार करती हुई उन्हीं के फर्शों से उन सबको काट करके बलि दे दी, और उनके सामने खड़ी हो गई, बोली गई, प्रभु आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप अपने स्वरूप को जगत में प्रचार कीजिए, नहीं तो लोग अपराध करते हैं, आपको समझ नहीं पाते हैं। उनको कोई भी बात नहीं, बस भगवत चिंतन में लगे हुए हैं। वही कुरुक्षेत्र में अभी भी भद्रकाली हैं, कुरुक्षेत्र में उनकी पूजा भी होती है। कुछ दिन के बाद में वो मेज पर बैठे थे रात में, और रघुगण राजा कहीं जा रहे थे, उनका एक पालकी वाला बीमार पड़ गया, कहे पकड़ लो इसको, बेगार जानते हैं आप लोग ना, बेगार पकड़ लिया उस पालकी वाले, बीमार पड़ा उसके बदले में लगा दिया। चल रहे हैं, नीचे दिख रही कि चीटी या कोई कीड़ा मकोड़ा मरने जाए, पालकी लेने का तो अभ्यास नहीं, इसलिए उनके पैरों के साथ में पैर इनका नहीं मिल सका। पालकी हिलने लगी, राजा ने कहा अरे पालकी क्यों हिलाते हो, जरा ठीक से चलो। तो उनके कहारों ने कहा ये इसका पैर नहीं मिलता है नए वाले का, अच्छा इनकी गलती है, तो हाँ ये लो ठीक का, ये जरा दुर्बल है आदमी ना, चल नहीं पाते हैं, बहुत पतले हैं, मैंने ये मोटे थे जरा दुबले हैं, भाई जरा संभल करके चलो, नहीं चलेगा तो देखो दंड दूंगा, याद रखोगे मैं राजा हूं सम्राट यहाँ का। और ऐसे अरे तरे करते हुए कुछ व्यंग्यात्मक उन पर वाणियां करी। ये तो अपने भोले भाले चल रहे थे, उन्होंने कहा कौन राजा, कौन प्रजा, कौन दुबला, कौन पतला, यदि दंड है तो वो सहने के लिए ही है। ऐसे दो चार बातें इन्होंने की, राजा कूद पड़ा वो पालकी से, नीचे उतर कर उनके चरणों में गिर पड़ा, आप कौन हैं, मैं तो जा रहा था कपिल देव जी के यहां, साक्षात कपिल देव तो नहीं है आप, मैं आपकी बाणियों को तनिक भी कुछ नहीं समझ सका। उन्होंने हंसते हुए कहा मैं भरत राजा था तुम्हारे ही कुल में, आज से हजारों वर्ष पहले, आप भरत राजा वही हैं, अब उसकी श्रद्धा देगी वही आत्मज्ञानी परम भगवत भक्त, बस उनके चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा, महाराज मैं आपके वचनों को मैं नहीं सुनी, कौन पतला कौन मोटा इसका क्या तात्पर्य। उन्होंने कहा देखो आत्मा न तो पतली है न मोटी है, यह ब्राह्मण नहीं है, शासक नहीं है, प्रजा नहीं है, ये दुबला भी नहीं है, पतला भी नहीं, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान ये आत्मा है। बड़े बड़े ऋषि महर्षि लोग साधन भजन करके उसको जानते हैं और सुखी होते हैं, आत्मा का ज्ञान होने पर ये दुख नहीं। कहे महाराज ये कैसे, हम अभी हैं तो आप पालकी ढो रहे थे, आपको नहीं लग रहा था, यदि दुख है तो ये दुख किसको अनुभव होता है, कोई ये शुद्ध आत्मा को नहीं होता है तो किसको होता है, अभी आप लोग दुख भोग कर रहे हैं, ये दुख भोग कौन कर रहा है, शरीर कर रहा है शरीर तो जड़ है ये तो करता नहीं, और आत्मा है वो तो इस सबसे परे है वो तो करते नहीं, तो ये कहां से ये हो रहा है दुख अनुभूति? यही मन क्या है, मन क्या है इसको समझना चाहिए अच्छी तरह से। कल उन्होंने प्रश्न किया था उसका थोड़ा सा उत्तर दिया, इसी चीज को समझता है। उन्होंने कहा कि देखो, किसने, राजा ने कहा बटलोई में पानी रखो और नीचे में चूल्हे में आग लगाओ और गर्म पानी में चावल छोड़ दो, तो वो चावल सिद्ध हो जाएगा ना। आग से इसका क्या संपर्क है? आग के ऊपर में बटलोई और बटलोई के ऊपर में भीतर में पानी और पानी में चावल, इतने दूर से वो कैसे सिद्ध हो गया? हो गया ना। भले ही आत्मा इसमें है तो शरीर आप कहते हैं, किंतु मेरी समझ में नहीं आता ये कैसे। यदि पानी रखा गया है बटलोई में और आग नीचे लगाई है तो उसमें गर्म होकर के चावल सुसिद्ध हो जाता है न भीतर में, वैसे ही ये शरीर है, इसके अंदर में मन है, उसके अंदर में आत्मा है, तो शरीर को दुख होने से आत्मा को क्यों नहीं पहुंचेगा? आप कहते हैं कि आत्मा को कुछ मालूम नहीं होता है, आत्मा को अनुभूति नहीं होती है सुख दुख का। उसी के लिए उत्तर ये दे रहे हैं, देखो ये मैं के कारण होता है इस शरीर में, आसक्ति के वजह से। जैसे हमने आपकी पत्नी यहां पर बैठी है वहां दूर, और हमने उनको थोड़ा सा ऐसा चप्पड़ लगा दिया, मारा किसको, मारा किसको, हमने पत्नी को, उस लड़की को मारा, आपको चोट क्यों पहुंची? वो तो चुप चुप से रोते रख लगी, आप उठ करके एक लठिया लेकर के उस जो कहा था उसके ऊपर में मारा, क्यों आपको चोट कहां से लगी? आपको तो मारा नहीं था उस व्यक्ति ने। ये है आसक्ति। अभी आत्मा हमारी सुसुप्त है, आत्मा कुछ नहीं कर रही, उसको ज्ञान नहीं है, किंतु थोड़ा सा ये लग रहा है ये आसक्ति, आसक्ति छोड़ दीजिए बस, उसको कोई भी कुछ करे आपसे कोई भी तात्पर्य नहीं रहेगा। इसलिए ये संसार की जड़ है आसक्ति मूल। आज संसार में आसक्ति छोड़ करके प्रभु में आसक्ति हो जाए, आत्मा में हो जाए, तो लाख इस जगत में, वो तो मरना है ही है लोगों को, आज मरेंगे कल मरेंगे, वो तो मरेंगे ही, उनको रोग होगा ही, उनको कोई ना कोई मारेगा ही, अपमान करेगा ही, आपको भी करेगा इस शरीर से। यदि आसक्ति छूट जाएगी अपने आप सब समस्याएं सुलझ जाएगी आत्मज्ञान होने पर। ये आसक्ति ही संसार का ये मूल कारण है। ये हट जाए, ये आसक्ति भगवान के चरण में प्रेम के रूप में लग जाए, बस इसी का नाम मुक्ति है। आज यहीं तक रहे, कल फिर हम लोग, बोलिए।
महाराज आसक्ति की बात है, प्रिय आपसे बात कर रहे हैं। एक आसक्ति छोड़ देना इतना आसान काम नहीं है। जब लक्ष्मण मुक्त हो गए थे, भगवान राम ने आपको भाई थे, इसलिए भाई थे कि उसका अस्तित्व
थोड़ा सा और आगे दो अंगुल बढ़ जाइए। जिस समय में राम अपनी लीला का संवरण कर रहे थे, उस समय में दुर्वासा जी राम से मिलने के लिए आए और लक्ष्मण जी से कहा, बेटा भैया तुम यहीं पर खड़ा रहना, किसी को आने मत देना ना? उस समय यदि कोई आया हमारे पास में तो उसको मैं जान से मार डालूंगा, मत आना देना किसी। और उसी समय दुर्वासा जी आ गए। दुर्वासा जी ने कहा, मैं राम से अभी मिलना चाहता हूं, एक मिनट देर नहीं चाहता विलंब, अभी जाओ। उन्होंने कहा, जी हमने राम जी ने ऑर्डर दिया है, जो कोई नहीं आए मैं कैसे जाऊं, नहीं जाएगा तो अभी अयोध्या को जला करके भस्म कर दूंगा, तुम्हें भी भस्म कर दूंगा। यदि चाहते हो सबका कलना भी जाओ। सुनने कहा जब मरना है तो अकेले ही मरूं, राम तो मरेंगे ही। फिर गए, नहीं तुम चले आए, अभी बात मेरी हमारी काल से भी पूरी नहीं हुई, इस ब्राह्मण से पूरी नहीं हुई, तो दुर्वासा जी आए हैं। अच्छा, तो वो जानते थे ये जोग माया का कार्य है। बस उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा, जो लक्ष्मण आ गए, दुर्वासा जी हैं, उनको भेज दो, किंतु एक बात करना, अब आज से हमारा तुम्हारा मिलन नहीं होगा, आज से मैंने तुम्हारा प्रत्याग कर दिया। क्यों प्रत्याग कर दिया? ऐसे भाई को जो जीवन भर साथ रहे, जिनके लिए उन्होंने प्राणों का भी सर्जन किया, उस लक्ष्मण को आज त्याग क्यों कर दिया? और लक्ष्मण जी वहां से निकल कर सरयू में गए और अपने प्राणों को भी सर्जन करके वो शेष के रूप में अपने वैकुंठ धाम में गए। क्यों? इसको समझना बहुत टेढ़ी खीर है, साधन का फल है। आप कुछ दिन संग करें, अभी 8-9 बजने जा रहा है।
अभी तीन दिन का प्रतीक में भी आपने एक थोड़ी कथा हमारे उसमें आई, भगवान शिव के उत्पाद उस कथा के सुनने से ये लग रहा है कि सतयुग में करने में कोई फर्क नहीं है।
सतयुग हाँ जब बड़ी बच्चे
सतयुग में भी मान अपमान का खूब बोल पाला था, जबकि मान अपमान वास्ते ही पार्वती जी ने भाई आप अपने को उनमें कह दिया, मान अपमान की वहाँ पूरी कहानी थी, पूरा बहुत यहाँ से भी ज्यादा बोल पाला था, उतना ही बोल पाला कलयुग में भी है। तो कलयुग में सतयुग में मजबूत को फर्क नहीं है, जब था वो कहानियाँ पहले भी थी, अब भी इंसान के साथ।
ठीक बात कहते हैं आप, पूरी तरह से ठीक करते हैं, किंतु आत्मज्ञान भी सब समय अपनी स्थिति पर है ना। आत्मज्ञान नहीं होने से आसक्तियां कलयुग में भी सतयुग में भी वर्तमान रहेंगी। जिस समय आत्मज्ञान होगा, संतों का संग होगा, अपने आप ये सब चीजें दूर हो जाएंगी। इसीलिए साधन भजन है ना? यदि साधन भजन नहीं होता तो हमको कैसे, जैसे कि आपने और लोगों की तो बात देखा, महावीर अभी का नाम सुना होगा, उनके कान में खोटी ठोक दी गई और जैसे के तैसे बने। अभी और की तो बात छोड़ दी, वो यीशु मसीह है या क्या वो उनको लगा दिया ऐसे ही रात। महात्मा लोग जानते हैं कि ये शरीर अजर अमर नहीं है, इसमें अनासक्त रह करके चलना चाहिए, इसलिए इनको पालन करने की चेष्टा से युग अपने अपने स्थान पर वो है, काल है, सब समय ये चीजें रख। रावण भी था उस समय में, इसके पहले और भी असुर लोग हो गए हैं, किंतु उनकी संख्या कम, संतों की संख्या अधिक। कलयुग में असंतों की संख्या अधिक, संतों की संख्या कम है। संतों माने ये विषय नहीं कहता, विचारों से, इसलिए इसमें अभी आसक्त हैं, और उस समय में भगवान में अधिक आसक्त रहते थे। उस समय में बहुत तत्वज्ञानी लाखों भरे पड़े रहते थे, अब उसके बदले में हम लोग बहुत आसक्त स्वभाव के आसक्त वाले इसमें हो गए हैं। अधिक समय में अपना सभी कुछ रहता, इसको सामंजस्य करके समझने की जरूरत। लो आरती कर दो। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है कि हमारे भाषणों को आप लोग सुन रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि ऐसे प्रश्न आए।
धन्यवाद।
जल्दी जल्दी ज्योति जलाओ।